इस्लाम में बालाधिकार।
श्रोताओं, कार्यक्रम इस्लाम में बाल अधिकार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं सैयद मीसम और स्वादी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में विशेष परिस्थितियां रखने वाले बच्चों के अधिकारों के संबंध में चर्चा की जाएगी।
हमने पहले बताया था कि इस्लाम की दृष्टि में बच्चों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इन विशेष अधिकारों के अतिरिक्त जो बच्चे विशेष परिस्थितियों में रहते हैं उनके लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान है। कार्यक्रम में हम अवैध संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे।
इस्लाम के अनुसार अवैध बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो महिला और पुरुष के अवैध संबंधों के कारण जन्म लेते हैं। कानूनी दृष्टि से जो खूनी रिश्ते होते हैं वे दो लोगों के बीच प्राकृतिक रिश्ते होते हैं। यही कारण है कि कुछ धर्मगुरुओं ने अवैध संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को खूनी रिश्ता माना है। शायद यही कारण है कि अवैध रूप से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में धर्मगुरुओं के बीच मतभेद पाए जाते हैं। इमामी फिक्ह में इस बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि अवैध रूप से पैदा होने वाले बच्चों का संबंध उस महिला और पुरुष से है जिनके माध्यम से वे इस संसार में आए हैं। जिना या बलात्कार के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में शिया धर्मगुरुओं के बीच दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण ये है कि ऐसा बच्चा अपने माता और पिता से ही संबंधित माना जाएगा और उसको केवल अपने माता एवं पिता से ही इर्स मिलेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति के किसी महिला के साथ अवैध संबंध हो और उससे बच्चा पैदा हो तो वो उनका ही माना जाएगा। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वो बच्चा अपने माता और पिता से संबंधित नहीं माना जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में भी उनके बच्चों के अधिकारों की बात कही गई है जो अवैध रूप से जन्म लेते हैं। मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के 25वें अनुच्छेद के आधार पर अवैध ढंग से जन्म लेने वाले बच्चे और उनकी माता को यह अधिकार है कि उनका ध्यान रखा जाए और उनकी सहायता की जाए। इस घोषणा पत्र के अनुसार बच्चा चाहे वैध या अवैध किसी भी ढंग से जन्मा हो उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कानूनी अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र के 3रे अध्याय के 10वें अनुच्छेद में भी बिना किसी भेदभाव के बच्चों और किशोरों के समर्थन की बात कही गई है। इसमें बच्चों के दुरुपयोग को रोकने का भी आह्वान किया गया है। बाल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में सभी बच्चों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। इसके पहले अध्याय के 2रे अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके सदस्य देशों का दायित्व बनता है कि उनके यहाँ रहने वाले बच्चों के साथ जाति, रंग, धर्म, भाषा, राजनीतिक सोच और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए।
मूल रूप में यह कहा जा सकता है कि जो बच्चे विशेष प्रकार की परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके लिए विशेष समर्थन की आवश्यकता है। इसी प्रकार समाज के सभी लोगों और सरकारों के लिए जरूरी है कि वे उसको व्यवहारिक बनाने में सहायता करें। इस विषय के बारे में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं या आपस में झगड़े करते रहते हैं। दूसरे नंबर के वे बच्चे हैं जो शरणार्थी हैं। तीसरे वे बच्चे हैं जो नाना प्रकार की हिंसा की जद में हैं, जैसे बाल मजदूरी, बाल तस्करी या इसी प्रकार की अन्य समस्याएं।
पारिवारिक कला से तात्पर्य ऐसा परिवार है जहाँ पर माता पिता के बीच आए दिन झगड़े होते हों और ऐसे झगड़े जो बाद में तलाक का कारण बने। पति और पत्नी के बीच मतभेदों को पवित्र कुरान में नुशूज़ शब्द से याद किया गया है। पवित्र कुरान की व्याख्याओं में नुशूज़ शब्द के लिए कई अर्थ बताए गए हैं, जैसे आज्ञा न मानना, पाप, विरोध, अपनी बात पर अड़े रहना। पवित्र कुरान में पति और पत्नी के बीच मतभेदों का उल्लेख सूरह निसा की आयत संख्या 34 और 128 में मिलता है। इन आयतों में इस समस्या से समाधान का मार्ग भी दिखाया गया है। पवित्र कुरान के अनुसार नाशेज पति और नाशेजा पत्नी उन्हें कहा जाता है जो एक दूसरे के प्रति अपने धार्मिक और कानूनी दायित्वों का निर्वाह नहीं करते।
बहुत से अवसरों पर देखा गया है कि पति और पत्नी बच्चों की उपस्थिति में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वे लोग यह समझते हैं कि बच्चे तो छोटे हैं, अतः वे इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। जानकारों का कहना है कि माता और पिता के बीच मतभेद चाहे किसी भी स्तर के हो, उनका प्रभाव बच्चों के विकास, विशेषकर मानसिक विकास पर अवश्य पड़ता है। जिन माता पिता के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, उनके बच्चे कभी कभी तनाव में देखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण माता पिता का झगड़ा होता है।
जब माता और पिता के बीच मतभेद बहुत ही गंभीर हों और वे तलाक लेने का निर्णय कर लें, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। इस प्रकार के बच्चों की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वे इस धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि किस ओर जाएं। ऐसे बच्चों की समझ में नहीं आता कि तलाक की स्थिति में वे माता के साथ रहें या पिता का साथ दें। इस प्रकार के फैसले बच्चों के लिए बहुत ही दुखद और गंभीर दुष्परिणाम वाले होते हैं।
संसार के कुछ देशों में यह कानून पाया जाता है कि जो माता पिता तलाक देने के इच्छुक हैं, उनके तलाक लेने की प्रक्रिया और उसके बाद बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को विशेष रूप से दृष्टिगत रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में तलाक से संबंधित कानून में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। अमरीकी राज्यों के इस कानून के अनुसार जज को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बच्चों के अधिकारों के लिए एक वकील नियुक्त करे। इसी प्रकार से कहीं पर यह काम न्यायालय के कंधों पर डाला गया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि माता पिता के तलाक लेते समय बच्चों के अधिकारों को दृष्टिगत रखना एक प्रशंसनीय काम है, जो वास्तव में विशेष महत्व का स्वामी है।